साफ सुथरे कपड़े भी पहनता है। तो फरमाए के इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह ताला जमील है, जमाल को पसंद फरमाते हैं। फिर आपने तकब्बुर की अलामात को बयान फरमाया कि तकब्बुर कहते किसको है, यानी किसी का अच्छा कपड़ा हो, माल हो, जमीने हो और साफ सुथरा रहे, अच्छा पहने, अच्छा खाता है, तो ये मुतकब्बिर नहीं है। लिहाजा माल होना तकब्बुर की अलामत नहीं है और गरीब होना ये इस बात पर दलालत नहीं है कि ये मुतकब्बिर नहीं है, क्योंकि गरीब मुतकब्बिर हो सकता है और मालदार हो, मुरब्बे के मुरब्बे जमीने हो और उसके अंदर तकब्बुर ना हो। अब ये बीमारी की क्या है, फरमाए के दो चीजों को आपने बयान फरमाया। नंबर एक बतरुल हक, हक बात को छुपाना, और दूसरा गमतुन नास, लोगों को हकीर समझना। ऐसा एक आदमी के पास माल है, उसके अंदर आजजी है, जो सच बोलता है, सच सुनता है और उस पर अमल करता है और हर एक को अपने से अच्छा समझता है, तो कहता है ये जो मुझे माल अल्लाह ने दिया, ये जमीन दी, ये अल्लाह ताला ने मुझे दी है। और अगर कोई गरीब है तो उसको हकीम नहीं समझता, या अगर वो दीनदार है, आलिम है, हाफिज है, उसको अल्लाह ताला ने कमाल दिया, इल्म, हिफ्ज कुरान, दीनदारी, तहज्जुद, इबादात, हज उमरा, एक नेमत है कि अल्लाह ताला दीनी नेमत है, उसको ये हासिल है। लेकिन अगर किसी को ये नेमत हासिल नहीं है, यानी एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता, दाढ़ी नहीं रखता, झूठ बोलता है, गुनाह करता है, लेकिन ये उसको हकीर नहीं समझता, उसके गुनाह से तो नफरत करता है लेकिन गुनाहगार को हकीर नहीं समझता, तो ऐसा आदमी मुतकब्बिर नहीं है। दादा तकब्बुर क्या है कि हक बात को छुपाना। किसी एक, अब हमारा एक आम सी बात है, किसी जगह मोटरसाइकिल खड़ी की, किसी ने आकर कहा कि भाई आप यहां ना खड़ी करें, लोगों को तकलीफ होगी, वो चलो हटो। अब ये छोटी सी बात है ना, लेकिन ये उसके तकब्बुर पर दलालत करती है, एक छोटी सी बात, यानी हक बात को कबूल नहीं किया। एक दिन का मसला बताया आलिम ने, खुदी ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, हम नहीं मानते, मैं ना मानू, ये है तकब्बुर की अलामत के हक बात को छुपाना। और अगर ऐसी अजीब बात हो कि उस्ताद शागिर्द को कहे, शागिर्द बात ना माने, तो ये तकब्बुर। शेख मुरीद को समझा रहा है कि ये काम ना करो और वो उस बात को समझ भी रहा है कि जो मेरा बड़ा मुझसे, मेरा बाप मुझसे, मेरा उस्ताद मुझसे फरमा रहा है वो ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं मानना, इसको कहते हैं तकब्बुर। और लोगों को हकीर समझना कि अपने किस, अपने माल की वजह से, अपनी जमीनों की वजह से, अपने दीन की वजह से भी किसी को हकीर समझना, ये भी तकब्बुर है। मसलन एक आदमी आलिम भी है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि गैर आलिम को अच्छा समझे, हकीर ना समझे। एक आदमी हाफिज कुरान है, वो फिर गैर हाफिज को हकीर ना समझे। एक आदमी को इबादत की नेमत हासिल है, क्योंकि देखो हम लोग कितने मोहताज है, हम लोग और हमारे नफ्स का तो यह हाल है कि अगर हमें अल्लाह ताला का फजल मेहरबानी ना हो, आज नमाज पढ़ने कल नहीं पढ़ेंगे। एक आदमी हम देखते हैं, हमारा दुनिया के अंदर मुशाहदा है कि एक आदमी दीन की नसीहत करता है, लोगों को समझाता है, कोई गलत काम करता है उसको समझाता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद खुद वही काम करता है। देखा ना, ऐसा होता कि नहीं होता। अब किस बात पे नाज करें, किस चीज पे कहे कि मैं बहुत नेक हूं, मैं ये हूं। जब तक ईमान को सलामती के साथ कब्र में नहीं लेकर जाएंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं है। हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब, बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, क्या फरमाते, मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक बुढ़िया ने आपकी तारीफ की, तो आप रोने लगे। तो कहती कि मैं तो आपकी तारीफ कर रही हूं, आप रोते क्यों हैं, आपको तो खुश होना चाहिए तारीफ पर। फरमाया बात यह है कि ईमा जो सलामत बलबे गोर बरे आहसन तो बरी चुस्ती हो चालाकी है माँ, जब मैं ईमान को सलामती के साथ कब्र में लेकर जाऊंगा उस वक्त खुशी मनाऊंगा कि वाह अब्दुल कादिर तू कितना होशियार था। उससे पहले तो क्या, हम अपनी दाढ़ी पर, अपने इल्म पर, अपनी इबादत पर किस चीज पर नाज करें। अगर हम देखते हैं ना कि एक आदमी जिस बात को समझा रहा होता है उसी काम को खुद करता है, ये अलामत है। ये कैसी अजीब बात है ना। इसलिए किस बात पर फख्र करें। अल्लाह ताला जो दीनी नेमत अता फरमाया, जो दुनियावी नेमत अता फरमाया, ये तो अल्लाह ताला का फजल और मेहरबानी है। तो ये है तकब्बुर। और किसी इंसान को अगरचे उसकी दाढ़ी नहीं है, उसको समझाए कि बेटा दाढ़ी रखो, अपनी शलवार टखने से ऊपर रखो, जमात से नमाज पढ़ा करो, दीन के काम करो और अल्लाह ताला को राजी और खुश करो, गुनाह से बचो, समझाए, लेकिन उसको हकीर ना समझे। इसलिए हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह फरमाया कि नसीहत करने का हक उसको हासिल है जो अपने को भंगी समझे और दूसरे को शहजादा समझे। यूं समझे कि बादशाह, अगर एक बादशाह जिसके साथ जल्लाद खड़ा हुआ नंगी तलवार लेकर, अब बादशाह एक भंगी को कह रहा है कि मेरे बेटा शहजादे को समझाओ, अब बादशाह की बात ना माने तो गर्दन उड़ती है और अगर शहजादे को गलत तरीके से समझाए तो गर्दन उड़ती है। कैसा मामला आया ना। अब दीन का काम करना भी है, समझाना भी है, उस वक्त भी गर्दन बचानी है, न करे तो भी गर्दन बचानी है, और अगर गलत तरीके से दीन का काम किया तो भी गर्दन फंसती है। अब कोई कह लो जी हम नहीं करते, तो फिर इस तरह सब काम छोड़ दे, शादी भी करना छोड़ दे, जमीनें भी छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि हर काम में नफा नुकसान दोनों चीजें। लेकिन दुनिया के लिए कोई आदमी नहीं सोचता, बल्कि क्या करता है, किसान को मालूम है कि, हर किसान को मालूम है कि जरूरी नहीं है कि मेरी जमीन पर गल्ला होगे, ये किसान खूब जानता है अच्छी तरह, सही है ना। लेकिन वो क्या करता है, हल चलाता है, बीज बोता है, खाद डालता है, पानी डालता है, फिर दुआ मांगता है, या अल्लाह मुझे फसल ता करता है, या अल्लाह मुझे फसल दे दे। तो काम करे, असबाब इख्तियार करे, और अगर कोई उस फसल में कोई खराबी पैदा होती है माहिरीन से मशवरा करता है। इसी तरह से काम करे, असबाब इख्तियार करे, मेहनत करे, किसी अल्लाह वाले को अपने सर पर बड़ा रखे, उसकी रहनुमाई लेता रहे, मशवरे करता रहे, अल्लाह से दुआएं मांगता रहे, या अल्लाह अपना फजल और रहमत और मेहरबानी मुझ पर फरमा, बस आगे बढ़ता रहे, इंशाअल्लाह ताला इसके साथ अल्लाह का फजल होगा। क्योंकि काम छोड़ना तो नहीं है ना, अगर काम छोड़ देगा तो क्या करेगा, क्या बैठेगा, क्या करेगा, सारा दिन क्या धोती संभाल के चारपाई पे लेटा रहेगा क्या। नहीं, काम भी करे लेकिन अल्लाह से भी डरे। इसको मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, करते रहो डरते रहो, करते रहो डरते रहो। अब तकब्बुर की कई किस्में हैं, मुख्तलिफ है, वो शेख समझता है, हर एक का तकब्बुर का अंदाज और होता है। और तकब्बुर का एक इलाज जो है, एक किस्म का तकब्बुर ये होता है कि इंसान नेमतों को अपना कमाल समझने लगता है, कि ये मेरा कमाल है, कि ये नेमत मुझे मिली। तो उस तकब्बुर का इलाज क्या है, तशक्कुर, यानी अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए। वो कैसे, या अल्लाह आपने मुझे मकान दिया, आपने मुझे गाड़ी दी, आपने मुझे लिबास दिया, आपने मुझे जमीन दी, आपने मुझे औलाद दी, आपने मुझे नेमत दी, या अल्लाह ये आपने दी है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं आपका शुक्र अदा करता हूं, आपकी मेहरबानी है। और जिन नेमतों पर जो शुक्र में की अदायगी में कमी है, मेरे इस कसूर को माफ फरमा दीजिए। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ने वाक़ा लिखा है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी थे, अल्लाह ताला से मुनाजात कर रहे थे, आहुजारी कर रहे थे, रो रहे थे और अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा कर रहे थे। रोते रोते शुक्र अदा करते करते अल्लाह ताला से अरज किया कि अल्लाह आपने मुझको इतनी नेमतें दी है, कई फ़ाश्कुरू का, मैं आपका शुक्र कैसे अदा करूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, अल आन, ये अब तूने मेरा शुक्र अदा किया, یعنی اپنی نعمتوں کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر اپنی کمزوری کا اعتراف, یہ بھی ایک طریقہ شکر ہے. شکر ادا کر کے اس شکر پر اعتراف کرنا, کمزوری کا اعتراف کرنا, یہ بھی شکر ہے. تو شکر ادا کریں, اور شکر ادا کرنے میں میرے شیخ میرے مرشد رحمت اللہ ایک بات اور بھی سمجھائی کہ دیکھو انسانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جب نعمت اللہ نے دی ہے, نعمت اللہ نے دی ہے, ہم کیوں کسی کا شکریہ ادا کریں؟ یہ بھی توحید ہے. حدیث شریف میں کیا آیا کہ لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس, اس شخص نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا جس نے انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کیا. مثلا کسی آدمی نے کسی کام میں تعاون کیا تو ہم اس کو کہتے ہیں جزاک اللہ, آپ کا شکریہ, آپ نے تکلیف کی محنت اور آپ نے مجھے وقت دیا, بڑی مہربانی آپ کی, سائیں تاڑی مہربانی. اور ماں باپ ہے, یہ بھی ایک شکریہ ہے کہ آپ ماں باپ کا کتنا, انسان کو جب خود صاحب اولاد ہوتا ہے نا, حضرت والا رحمت اللہ علیہ شیخ اکثر سناتے تھے تجھے بھی اولاد کا غم یاد ہوگا جب تو صاحب اولاد ہوگا, تجھے پتہ چلے گا کہ ہمارے ماں باپ نے کیسے پالا ہے ہم کو. ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کریں کہ آپ کے شکر مہربانی. اس لیے تو ان کے شکریہ میں ایک چیز اور بھی کہ دعا مانگے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ بھی ان کے شکریہ کا طریقہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے کہ دعا مانگے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری بچپن میں تربیت فرمائی. یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے. اور استاد ہے اس کا شکریہ ادا کرے کہ انسان استاد پڑھاتا ہے. اب نورانی قاعدہ جس وقت پڑھاتا ہے وہ بچے کیا کیا حرکتیں کرتا ہے, کتنا ستاتا ہے استاد, لیکن تحمل برداشت ہر طریقے سے, اس کا بھی شکریہ ادا کرے. شیخ ہے مربی ہے کسی بات کو سکھا رہا ہے سمجھا رہا ہے, اس کا بھی شکریہ ادا کرے. انسانوں کا بھی شکریہ ادا کرے. اب اور یہاں تک کہ ہونا تو یہ چاہیے, دیکھیں ایک عالم نے کوئی اچھی بات بتائی, جن کے خادم نے اچھی بات بتائی, اچھا جزاک اللہ ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا. اور اگر مان لو معلوم بھی تھا تب بھی شکریہ ادا کرے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ایک آدمی روٹی کھلاتا ہے, روٹی کھلاتا ہے تو اس کو کہتا ہے جزاک اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے روٹی کھلائی, آپ نے مجھ کو روٹی کھلائی. تو تربیت, حالانکہ روٹی تو بار بار کھا رہا ہے وہ, پھر بھی شکریہ ادا کرتا. تو اگر وہ دین کی بات دھوکا دوبارہ تکرار ہو جائے تو بھی شکریہ ادا کرے. اتنا کنجوس بھی نہ بنے کہ زبان سے بھی زبان بھی نہ ہلائے کہ جی جزاک اللہ تعالی, اتنا بھی کنجوس نہ بنے کہ جی زبان بھی نہیں, لوگ جیب سے نوٹ بھی نہیں نکالتا, منہ سے زبان سے جو ہے شکریہ کا لفظ بھی نہیں نکالتا, اس کو جزاک اللہ کا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے بات دین کی بات پیش کی, دین کی بات سنی اور میں نے یہ کام کیا, آپ کا مہربانی ہے, آپ کا فضل ہے. تو جب بندہ شکر ادا کرے گا تو اس شکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوگا. ہر وقت بندے کو یہ احساس ہوگا کہ یہ نعمت بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. تو جب وہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرما رہے, تو اس بات کی وجہ سے بندے کو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا ہوگا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مجھ پر کیسی مہربانیاں فرما رہے ہیں, قدم قدم پر, موقع با موقع, کیسا کرم فرما رہے ہیں. تو شکریہ ادا کریں, کنجوس نہ بنے. یہ بھی بخل ہے, بخل, زبان بھی نہ ہلانا, یہ بھی بخل ہے نا, کنجوسی ہے. جیب بھی نہیں ہلاتا, زبان بھی نہیں ہلاتا, مجھ کا شکریہ ہی تو ادا کر دے کم زبان سے. تو یہ بھی, تو جتنا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس پیدا ہوگا. اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوگا کہ ہر نعمت مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے, پھر تکبر کیسے کرے گا؟ सर तकब्बुर का मसला यही है कि मैं हूं, मुझे मिला है, मैंने लिया है, और जब ये होगा अल्लाह ने दिया है तो कुछ बात ही खत्म, तकब्बुर का झगड़ा ही खत्म, क्योंकि उसको हर चीज का एहसास है भाई मेरा ये काम, मेरी ये मेहनत, मुझे जो कुछ दिया ये तो अल्लाह ने दिया, तो जब अल्लाह ने दिया तो मेरा तो कोई कमाल ही नहीं है, ये तो सब कुछ अल्लाह का है, तो जब मेरा कोई कमाल नहीं है तो फिर तकब्बुर का नामो निशान भी ना होगा। इसलिए अल्लाह हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला आपने ये दिया, दीनी नेमत, दुनियावी नेमत पर भी शुक्र अदा करें। और एक बात सुना के खत्म करता हूं, मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, देखो कोई रोटी खिलाए उसको कहते जजाक अल्लाह, आपको बड़ी मेहरबानी, ताड़ी बड़ी मेहरबानी, तू सा रोटी खिलाए, तो फरमाए रोटी खिलाने वाले का शुक्रिया अदा करते हो, मैदा बनाने वाले का शुक्रिया नहीं अदा करते, जिसने मैदा बनाया रोटी ज्यादा कीमती है या मैदा, अगर हजम ना हो खाना मैदे में जा रहा है, या इंसान अल्लाह हिफाजत फरमाए, कैसा कैसा वक्त आता है रोटी नहीं खा सकता, अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो फरमाया कोई टोपी लाकर दे दे, अब टोपी ओढ़ी कहते जजाक अल्लाह हाजी साहब आपने मुझे मक्के शरीफ से मदीना शरीफ से टोपी ला कर दी। फरमाया कभी अगर सर ना होता तो टोपी कहां पहनते, कहां ओढ़ते टोपी, तो सर बनाने वाले का भी शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह आपने सर बनाया, सजदे का मौका अता फरमाया, नमाज की तौफीक अता फरमाई, इबादत की तौफीक अता फरमाई, यह आपका शुक्र और मेहरबानी है, अल्लाह ताला आपका फजल है, बस मेरी खताओं को माफ होगा। तो जितना बंदा शुक्र अदा करता रहेगा उतना अल्लाह ताला से ताल्लुक पैदा होगा, और शुक्र अदा न करने से फिर नेमत का इस्तेहजार खत्म हो जाता है, शुक्र अदा न करने से नेमत का इस्तेहजार खत्म हो जाता है, फिर उसको होता है भाई मैं हूं, मैं सब कुछ हूं, मैंने सब कुछ किया। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए, अपना कुर्ब और ताल्लुक खास नसीब फरमाए, और तमाम रूहानी बीमारियों से हिफाजत नसीब फरमाए, और रूहानी बीमारियों का भी इलाज करे। देखिए कोई बीमारी लगती है सीधा मुल्तान भागते हैं, कभी लाहौर जाते हैं और कभी गैर मुल्क भी जाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, जब रूहानी बीमारी की कहते जी हमारे देहात में, हमारे गांव में, हमारे इलाके में कोई ऐसा है ही नहीं जिसे हम सीखे, तो जब यहां नहीं है, कभी किसी ने कहा कि जी यहां जिस पे अस्पताल नहीं है तो छोड़ो मरने दो मरने वाले को, उसको लेकर भागते हैं, मुल्तान जाते हैं, कितने कितने दिन रहते हैं, लाहौर जाते हैं, मुल्क से बाहर कराची जाते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, उस वक्त कोई ये नहीं कहता कि वहां तो पैसे भी कितने लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, जमीन बेचते हैं लोग, जमीन बेच बेच के इलाज करवाते हैं, और जहां रूहानी बीमारी, दुनियावी बीमारी पर तो अजर भी मिलेगा, कोई बीमारी में मर भी जाएगा तो उसको अजर मिलेगा, लेकिन रूहानी बीमारी पर तो अजाब होगा, अफसोस की बात है, उसके इलाज का हमें कोई एहसास और ख्याल नहीं है। जी वक्त नहीं है, अभी जमीन में ये हो रहा है, बस अभी गंदम की फसल तैयार हो रही है, अभी आम आने वाले हैं, अभी फिर ये हो रहा है, जरा बेटी की शादी है, फला काम करना है, नतीजा है कि वक्त जो है गुजारे चले जा रहे हैं, और बाल सफेद होते होते कब्र की मंजिल करीब से फिर जिस्मानी कमजोरी आ गई, अब लाठी लेकर चल रहे हैं, अब सहारा भी नहीं है कि जी अब कैसे जाए, ऐसा नहीं, अपने वक्त से फायदा उठाना चाहिए, इस चीज का इंतजार न करें। देखिए ना, कभी कभी तो फ्री कैंप लगता है ना मेडिकल का, कभी कभी लगता है, वो तो मुख्तसर इलाज के लिए, जिसको सही इलाज कराना है तो अस्पताल में जाए, हर वक्त फ्री कैंप में थोड़ी हर वक्त इलाज कराता फिरेगा, अगर कोई दीन का खादिम आ जाए फ्री कैंप लगा दिया तो ये थोड़ी कि वही सब इलाज हो जाएगा, वो तो ज्यादा से ज्यादा इंजेक्शन लगा देगा या जो है कोई दवा दे देगा, लेकिन अगर ऑपरेशन की जरूरत है वो तो उसकी अस्पताल में जाना पड़ेगा कि नहीं। लादा जिस अल्लाह वाले से मुनासबत हो किसी को अपने सर पर बड़ा रखे। देखिए अगर हम कोई गलत काम करें हमें कोई कुछ कह सकता है, नहीं बोल सकता ना, तो कितनी अजीब बात है कि पूरी दुनिया में एक आदमी हमारी इसलाह ना करे, एक आदमी को तो हम इख्तियार देना कि हमें कान मरोड़े, कहे, समझाए, किसी को तो इख्तियार देना, किसी को तो अपना पीर बनाए, बड़ा बनाए, मुर्शिद बनाए, रहबर बनाए, कोई तो हो जो हमारा कान पकड़े, हमें कहे कि तुमने गलत किया है, क्योंकि सारी दुनिया तो हमारी तारीफ करेगी, लोगों का तो काम ही यही है, कोई हमारे गलत काम पर कोई नहीं टोकता हमें, तो किसी को तो कहे ना कि कोई तो ऐसा हो, किसी को तो अख्तियार दे जो हमें कहे। लादा अपने इल्म को, अपनी उम्र को, अपने माल को, हर चीज को पीछे रखे, इस्लाह के लिए अपने को पेश कर दे कि जी बस मेरी इस्लाह कीजिए और मुझे समझाइए, और फिर जब वो कहे तो तावील पेश ना करे, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, वो कहे बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो जिस नजर से ये अल्लाह ताला अपने औलिया को जो नजर अता फरमाते हैं, जो बात होती है, देखिए ना एक छोटा सा बच्चा है वो बाप की बात को रद्द करता है, कहता है अब्बा ये नहीं है, हालांकि करता वही है, बाप समझता है क्योंकि तजर्बा है उसको, बाप को अल्लाह ताला एक चीज देता है, वो बच्चे के चाल से समझ जाता है ये कहां जा रहा है, किन हरकतों में है। तो जब एक बाप समझ सकता है तो अल्लाह ताला जिनको दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाते हैं, तौफीक देते हैं, उनको ना समझाते होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए, मेहरबानी फरमाए। वाखिर दुआवान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا يا كريم الله فرما اصلاح فرما دیجئے جملہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے تقوی والی زندگی عطا فرما فرمانبرداری کی زندگی عطا فرما یا اللہ غفلت سے وقت کو برباد کرنے سے فضول گوئی سے ہم سب کی حفاظت فرما یعنی یا اللہ اپنے باتوں میں اور فضول بیٹھنے میں بیکار بیٹھنے میں اپنے وقت کو ضائع کرنے میں سے ہماری حفاظت فرما اور یا اللہ تعالی عبادات اور یہ دنیا کے جو کہ کام کمانے کی جگہ ہے آخرت کو کمانے کی جگہ ہے یا اللہ تعالی اس کی فکر کی توفیق عطا فرما ہماری جان ہمارا مال ہماری آبرو کو یا اللہ خدمت دین کے لیے قبول فرما ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے یا اللہ ہماری ہدایت فرما دیجئے ہمارے قلوب کو منور فرما دیجئے جملہ اخلاق رزیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرما ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے ہم سب پر اپنا فضل فرما دیجئے ہمارے اس میں بیٹھنے کو اپنی محبت کا دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے یا اللہ اور خطاؤں کو یا اللہ غلطیوں کو کوتاہیوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے ہمارے اندر عاجزی پیدا فرما دیجئے یا اللہ تعالی آپ کا شکر ادا کرتے ہیں جو آپ نے جملہ دینی اور دنیاوی نعمتوں پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے کتنا فضل فرمایا ہم جیسے نالائق مجھ جیسے نالائق پر اتنی فضل المہربانی فرمائی اور یا اللہ یا اللہ تعالی شکر کی حق ادا کرنے کی میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو معاف فرما دیجئے میری کمزوریوں کو معاف فرما ہم سب کی کمزوریوں کو معاف فرما دیجئے اور یا اللہ شکر گزار بندوں میں شامل فرما تقوی والی زندگی عطا فرما فرما برداری کی زندگی عطا فرما دیجئے ہمارے اندر یا اللہ اچھے اخلاق پیدا فرما دیجئے ہمارے کاموں کو آسان فرما ضروریات کو پورا فرما اور یا اللہ رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما اور یا اللہ تعالی ہم کو اور ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا اور یا اللہ تعالی ہم میں سے جس کی کوئی پریشانی ہو یا اللہ اپنے کرم سے جملہ پریشانیوں کو دور فرما دیجئے ہر غم کو خوشی سے بدل دیجئے سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا ہم سے میں رکھیے اور سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اور یا اللہ تعالی جملہ دینی خدام ہمارے قاری صاحب کی بھی محنت ہے اس کو بھی قبول فرما اور جملہ دینی خدام سارے عالم میں یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما ہمارے دینی خدام کی حفاظت فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمارے ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرما یا اللہ یہاں کی زراعت تجارت معیشت میں برکت فرما اور یا اللہ اپنے کرم سے امن و امان کو قائم فرما شریعت و سنت کا بول بالا فرما دیجئے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته